ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने के लिए लोकसभा में पेश कर दिया है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी धार्मिक स्थल की व्यवस्था को नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केवल संपत्ति के प्रबंधन का विषय है। श्री रिजिजू ने कहा कि किसी भी वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। और अब आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां इस समय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक के संबंध में संसद को संबोधित कर रहे हैं।
हस्तक्षेप नहीं होगा, ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति से विचार विमर्श और सुझाव लेने के बाद संसद में पेश किया गया है।
भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए।
इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई।
वक्फ बिल जो जेपीसी में आया, उसमें कमियां देखते हुए संपूर्ण विपक्ष ने कुछ संशोधन दिए थे और सरकार ने एक नहीं माना। तो जो भारत का स्थापित संविधान है उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसका हम विरोध करेंगे।
समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का विरोध करेगी।
हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी और जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है।
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि देश के युवा भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का विषय है विकसित भारत। म्यांमार में पिछले सप्ताह के विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 2719 हो गई है। 4,500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 441 लोग लापता हैं। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन उंग वाइंग के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपदा के बाद क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत ऑपरेशन ब्रह्म के अंतर्गत म्यांमार को लगातार राहत सामग्री और मानवीय सहायता दे रहा है। अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से नए शुल्क लागू कर देंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे, जबकि ऑटो आयात पर 25% शुल्क कल से प्रभावी होगा। वैश्विक स्तर पर मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 178 अंक बढ़कर 76,203 पर था। निफ्टी भी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,195 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।